नमस्कार स्पोर्ट्स एंड के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स एंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन सिंगल्स का फाइनल जीता और अनाहत सिंह ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब अपने नाम किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलकूद प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेलकूद क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती खेल सामानों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की एक समर्थित पहल का प्रस्ताव किया। इसमें कोच के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम जैसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भी उसी तरह की वित्तीय सहायता मिले जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को मिल रही है, ताकि भविष्य में भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।
I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and कॉम्पिटिशन।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को पहली बार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4,479.88 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 के संशोधित आवंटन से 1,133.34 करोड़ रुपए अधिक है। कैसे देखा जाए इस बजट को जो कल पेश किया गया खेलों के मद्देनजर?
देखिए, जो एलोकेशन है वो तो अच्छा है कि मतलब आपने जो है काफी साइजेबल जंप है
जी।
मगर होता क्या है कि यूटिलाइजेशन जब हम बात करते हैं फंड्स का करेक्ट यूटिलाइजेशन, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज बड़े अंडरलाइन की आज कि कोचेस का नाम लिया उन्होंने
जी।
हमारे इसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों की, कोचेस जो बीच के जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही की कॉग होता है पूरे व्हील में
जी।
उसको जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि आप कोचेस को इतना सक्षम बनाएं कि वो जो जो अपग्रेड हो रहे हैं, जो भी चेंजेस होते हैं रूल्स में, लॉ में, उससे अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखें
जी।
होता क्या है कि हमारे कितने कोचेस हैं जो सर्टिफाइड कोचेस हैं
जी,
वो जब उनके पास वो डिग्री मिल जाती है या डिप्लोमा मिल जाता है, फिर वो सीखना बंद कर देते हैं। आपको उनको जो है, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जब ये कोचेस के ऊपर इतना फोकस रखा गया है कि हम उनको भी उतना ही दें जितना खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उनकी जो क्षमता है उसको भी हमको और अच्छा बनाना है, उनके जो उनको ऑप्टिमाइज कर पाए। वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टेज पे जाके जो एक्सपीरियंस है सिर्फ उससे सीखते हैं। आजकल इंटरनेट है, आपके पास काफी ऐसे माध्यम है जिससे कि आप अपने जो भी नॉलेज है उसको आप और बेहतर बना सकते हैं, वीडियोज हैं आप देखें। लेकिन यहां क्या होता है कि आप वो अपनी जो एक डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा के दम पे आप निकलते जाते हैं कि भाई मैं तो नेशनली सर्टिफाइड कोच हूं, वो नहीं होना चाहिए
जी।
उसको हम मेरिट बेस्ड कर लें सारा कुछ, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। ये खेलो इंडिया मिशन जो है ये बहुत अच्छा एक मूव है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सारी चीजों को, इसके वर्टिकल्स जितने भी हैं खेलो इंडिया के जो हम देखते रहते हैं। कॉम्पिटिशन अपनी जगह है
जी,
जो हम खेलो इंडिया जब हम बात करते हैं हमें सीधा सीधा दिखता है कॉम्पिटिशन, लेकिन ट्रेनिंग और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट है, ये दो चीजें जो कि उसमें है, ऑब्जेक्टिव्स में है, उसको हम कितना उस पर जोर दे रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, हमको हम लोग पैसे स्पेंड कर रहे हैं जितना खेलो इंडिया स्पेंड कर रहा है, मेरे ख्याल से और कोई स्कीम नहीं है। और मैंने ये हमेशा मेंटेन किया है कि प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर की हम लोगों ने बहुत बात की है, जिसमें कि हम स्पोर्ट्स को हम एनकरेज करने के लिए या फिर कंपनीज को हम ये कहें कि साहब आप एक एक स्पोर्ट्स आप एडॉप्ट कर लो, हम आपको टैक्स रिबेट दे देंगे, एग्जेम्पशंस दे देंगे, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसका मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। तो अगर ये मनी जितने भी एलोकेटेड है 4,000+ करोड़ अगर उसको सही मायनों में स्पेंड किया जाए तो भारत का डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स और अच्छे होंगे, हर लेवल पे अच्छे होंगे।
चलते हैं सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। कनिष्क चौहान के हरफन वाला खेल प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही, भारत ने 47 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी की 62 रन की साझेदारी ने टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। वेदांत ने 98 गेंद में 68 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। कनिष्क चौहान ने 35 जबकि अम्बरीश ने 29 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की पूरी पारी 252 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल सुभान ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 253 रन का लक्ष्य 33 ओवर 3 गेंद में ही हासिल करना था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने 23 रन पर ही समीर मिन्हास के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। हमजा जहूर ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जुटाए। वहीं जहूर ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान फरहान यूसुफ के साथ 63 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान ने 151 के स्कोर पर कप्तान फरहान का विकेट गंवाया, जिसके बाद भारत ने मैच में शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान की पारी को 194 रन पर ही समेट दिया। खिलन पटेल और कप्तान आयुष मात्रे ने 3-3 विकेट हासिल किए। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बुधवार को अफगानिस्तान से होगा, वहीं पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। स्पोर्ट्स कैन के लिए मैं विशेष शुक्ला।
भारत अब सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगी, कितना अहम होगा उनके साथ ये मुकाबला?
इंटरेस्टिंग होगा जी। भारत ऑफ कोर्स बिल्कुल फेवरेट होगा उस मैच के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ, हमारे पहले 3 विकेट और आखिरी 3 विकेट, इन दोनों को आप हटा दीजिए, हमारे जो बीच के जो विकेट्स जो हैं, जिस अंदाज में हमारा मिडिल ऑर्डर कल खेला है, 6 लोग लगातार टिक के खेले, और जो आपके जो टॉप ऑर्डर जो होता है, जो टॉप 3 के जो मतलब जो टॉप 3 बल्लेबाज होते हैं
जी,
वो एक ही स्कोर पे आउट है, 47 for no loss से लेके 47 for 3
जी।
उस वक्त जरा सोचिए कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली कितना अच्छा फील कर रहा होगा और भारत के ड्रेसिंग रूम का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन वहां से टीम को निकालना, त्रिवेदी ने जैसे बैटिंग की, बिल्कुल रुक के संभल के, बिल्कुल वो मैच उन्होंने फंसाया वहां पे, कोई जल्दी नहीं दिखाई क्योंकि ओवर्स बाकी थे, ये 50 ओवर का गेम है, 2020 माइंडसेट से आप नहीं खेल सकते थे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यंगस्टर्स अगर ये टेम्परमेंट दिखा रहे हैं 50 ओवर गेम में, तो इनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। और ये नहीं था कि मैच आसान था इंडिया के लिए, आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, स्पिनर्स उस विकेट पे भी इफेक्टिव थे, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर ने उनको बहुत अच्छा खेला। इसके ठीक विपरीत हमारा स्टार्ट जो था, जब हमने उनको चेस, मतलब जब पाकिस्तान ने चेस करना शुरू किया 33.3 ओवर्स में, उनको वो मैच जीतना था
जी,
जो कि 2/3 आपका जो टोटल नंबर ऑफ ओवर्स के 2/3 नंबर्स पे आपको ये मैच खत्म करना था। समीर मिन्हास जो उनका ओपनर हैं, उनके आउट होने के बाद, और वो भी जल्दी आउट हुए, उसके बाद तो ये लगभग तय हो गया था कि अब ये पाकिस्तान ये मैच 33 ओवर्स में तो नहीं जीतने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि वो उससे जल्दी हारना नहीं चाहते थे, ये मैच जीतना चाहते थे क्योंकि टारगेट वैसा था। लेकिन ये पिच ऐसी थी जहां पे कि इंक्रीजिंगली स्पिनर्स जो हैं वो इफेक्टिव होते जाते, और हमने बिल्कुल यही देखा कि स्पिनर्स जब आए और लास्ट में मात्रे ने जैसे आके 3 विकेट और झाड़ दिए लास्ट में, उनके जो गुच्छों में जो विकेट गिरे हैं लास्ट 26 रन पे, कितने 6 विकेट कुछ गिरे उनके, तो वो आपको आपको ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का प्लान ही नहीं था। पहले तो आपने टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग करनी थी, जो विकेट डिटेरियोरेट होती है, जहां बारिश हो रही है वहां सब कुछ हो रहा है, आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि पहले बैटिंग कर लीजिए, वो भी उनका वहां से आई थिंक टैक्टिकली दे वेंट रॉन्ग। 47 for 3 जब इंडिया था, पाकिस्तान का बेस्ट पोजीशन वही था, उसके बाद पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद जैसे जैसे इंडिया अपनी पोजीशन इंप्रूव करता चला गया, और खासकर कनिष्क और जो लास्ट में जो एक स्टैंड हुआ 8th विकेट पार्टनरशिप, वो स्टैंड जो था वो कमाल का था. उस स्टैंड में जो 50 रन जो लगे 200 से लेके 250 तक, वो 50 रन ने पाकिस्तान के जो रहे से होप्स थे, अगर आप उस टाइम ड्रेसिंग रूम उनका देखते, डगआउट देखते, सरफराज की शक्ल देख पे लिखा था कि ये मैच निकल गया है वहां से. मतलब कम से कम क्वालिफाइंग चांसेस तो खत्म हो गए थे. लेकिन हाँ, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया. अफगानिस्तान अच्छी टीम है, वही स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, तो इंडिया को बैटिंग इससे अच्छी करनी पड़ेगी. क्योंकि मुझे बहुत यकीन है कि इंडिया की बैटिंग हालांकि डीप है, मगर जब तक टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं करेगा, प्रेशर मिडल ऑर्डर पे हमेशा आएगा और हमेशा मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं खेलेगा. तो टॉप ऑर्डर यह है. और सूर्य, ये हमारे जो वैभव जो हैं, कल जैसे एक बॉल पे दो बार आउट हो सकते थे और उसके ठीक अगली बॉल पे आउट होके चले गए. तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आएगी. और मुझे पूरा यकीन है कि वीवीएस लक्ष्मण, ऋषिकेश कनेटकर, ये दो लोग जो ड्रेसिंग रूम में हैं, कुछ चीजों पे उनको टाइट करना पड़ेगा हमारे प्लेयर्स को. क्योंकि अब जो मैचेस हैं, यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है. अब यहाँ से आपको कोई लीग नहीं है, नॉकआउट है, सीधा सीधा आपको जीतना है.
चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पर. स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में अल्काराज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया. इस जीत के साथ 22 वर्षीय कार्लोस अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. जोकोविच ने अल्काराज को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक खेल का प्रदर्शन किया है. बेहतरीन प्रदर्शन रहा हम अल्काराज की अगर बात करें तो, एक तरफ जहां एक्सपीरियंस जोकोविच का था, पहली बार वो फाइनल्स हार रहे हैं और अल्काराज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं.
बिल्कुल. और दूसरी बात ये भी थी कि लोग कह रहे थे कि जैसे सेमीफाइनल्स हुए थे
जी,
लंबे सेमीफाइनल्स दोनों, हालांकि अल्काराज का सेमीफाइनल और भी लंबा था, 5-5 सेट वाले दोनों. ये था कि क्या जोकोविच रिकवर कर पाएंगे, और ये लगा कि बिल्कुल रिकवर कर पा रहे थे क्योंकि पहला सेट जिस आसानी से जीते
जी,
उसके बाद क्लोज मैच, मतलब हालांकि आपको स्कोर्स में उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, वो रैलीज लंबी थी और जैसे बोलते हैं कि बड़े मोमेंट को सीज करते हैं, तो वो जो कल था, कल अल्काराज का कमाल का था वो. और कुछ रैलीज अगर आप देखें, कुछ अनबिलीवेबल रैलीज, आई मीन जोकोविच ने एक एक पॉइंट, आई मीन एक बार तो बिल्कुल कोर्ट से बाहर आके उन्होंने बॉल को ऐसे एंगल से उठाया और तब भी पॉइंट नहीं मिला
जी.
तो जब ऐसे पॉइंट जब आप लूज करते हैं, देखिए पॉइंट का तो एक पॉइंट ही होता है, लेकिन कितनी रैली के बाद, कितनी मेहनत के बाद एक पॉइंट जीतते हैं या हारते हैं, ये साइकोलॉजिकली मैच के बीच बहुत असर करता है दोनों खिलाड़ियों को. और ये धीरे धीरे ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो है अल्काराज साइकोलॉजिकली जोकोविच को वहां पे हर्ट कर रहे हैं जहां से शायद वो रिकवर ना कर पाए, और हुआ भी यही
जी. देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में मलेशिया की गो जिन वेंग ने हैमस्ट्रिंग के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया, जिससे देविका ने अपना पहला सुपर 300 का खिताब अपने नाम किया. अमूमन हम देविका का नाम इतना सुनते नहीं, लेकिन लगातार उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है देविका ने.
देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो लेवल है 300 का जो टूर्नामेंट होता है, यहाँ पे ही हमारे लोगों को अभी जो है पार्टिसिपेशन यहां रखें
जी,
जीतें, यहां से कॉन्फिडेंस मिले, फिर 500 या 750 या 1000 की तरफ सोचें. क्योंकि हमारा होता क्या है कि हमारे प्लेयर्स अभी जाके ऊपर वाले लेवल पे खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस कम है, अभी उस लेवल के लिए तैयार नहीं है. तो ये जो सक्सेस होता है छोटे लेवल पे
जी,
इस लेवल के लिए ये बिल्कुल सही रिजल्ट है ये, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की. और अभी 300 के लेवल पे, जैसे पहले होता था सैटेलाइट लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे जब लोग जीता करते थे, तो हम कहते थे ये बिल्कुल सही तरीका है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएं ऊपर. तो ये बिल्कुल सही स्टेप है और इस लेवल पे भारत को जीतना चाहिए था और जीते भी.
उधर स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताबी मुकाबला अनाहत सिंह ने जीत लिया. फाइनल में अनाहत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को 12-10, 11-5, 11-7 से हराकर पीएसए कांस स्तर का खिताब अपने नाम किया. लगातार अच्छा प्रदर्शन अनाहत का संक्षिप्त में जाना
कमाल है सचमुच. मुझे मतलब बैडमिंटन से ज्यादा मुझे स्क्वैश से मतलब उम्मीद है, और वो भी अनाहत की जो परफॉर्मेंस रही है
जी,
यकीन मानिए बहुत कमाल की है. टीम चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने अच्छा किया है अभी, और अनाहत से बहुत उम्मीद है
जी. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का. कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ. राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद.
बहुत बहुत शुक्रिया.
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.